हम सब परमात्म प्रिय आत्माएं हैं, जिन आत्माओं को परम आत्मा स्वयं विश्व के कोने से चुनकर अपने दिल में छिपा लिया है, अपनी गोद का बच्चा बना लिया है, अपने प्यार का अधिकारी बना दिया है। ऐसी हम आत्माएं विशेष आत्माएं हैं कि जिन आत्माओं को स्वयं भगवान ढूंढकर अपना बनाया है। तो भाग्यशाली तो बन ही गए, प्रभु के प्यार के पात्र बन गए। अभी भगवान हम सबको आप समान, शिव बाप समान भी और ब्रह्मा बाप समान भी बनाना चाहता है।
हमें दोनों बाप के समान बनना है और दोनों बाप के समान बनने के लिए दोनों बाप को फॉलो करना है, शिव बाप को भी फॉलो करना है और ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है। शिव बाप को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि शिव बाप के पास, शिव बाप के घर में चलना है तो उन जैसा जरूर बनना है, क्योंकि उन्हीं के घर में चलना है। तो तपस्या में, स्थिति में, योग में शिव बाप को फॉलो करना है, पूर्ण कर्मातीत बनना है। वैसे तो विश्व की सर्व आत्माएं चाहे शिव बाप को फॉलो करें या न करें, परम धाम तो जाएंगी ही, लेकिन शिव बाप को फॉलो करने से फायदा क्या होगा? जैसे आप लौकिक में देखा होगा कि जब कोई बड़ा वीआईपी आता है तो आपने देखा होगा कि उसके आगे पीछे चारों तरफ गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, और उस बंदूक के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है और लोग उसे नमस्कार भी करते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि जब कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के बीच में ही चलता है, उसके भी चारों तरफ बंदूक वाले होते। अब देखो, चल तो दोनों रहे हैं बंदूक के बीच में, लेकिन चलने में कितना अंतर है। एक बंदूक के बीच में शान से चल रहा है और एक बंदूक के बीच में सिर नीचे किए हुए मार खाते हुए जा रहा है। तो बाबा के घर तो चलेंगे सब, लेकिन कैसे चलना है? जो धर्मराज भी सलाम करे, उसकी विधि है शिव बाप को फॉलो करके शिव बाप समान संपूर्ण कर्मातीत बन जाना है, संपूर्ण निर्विकारी बन जाना है। जरा सा भी हिसाब किताब ना रहे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है कर्म क्षेत्र पर, कर्म करते हुए ब्रह्मा बाप कैसे संपूर्णता को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हमें भी संपूर्णता को प्राप्त करना है, जिससे सतयुग के आदि में ब्रह्मा बाप की आत्मा जो श्री कृष्ण बनेगी उनके साथ साथ रहें। तो फॉलो दोनों बाप को करना है, शिव बाप और ब्रह्मा बाप। अब दोनों को फॉलो कैसे करें, उसकी विधि बाप दादा हमें मुरलियों के द्वारा बताते रहते हैं। इस विधि से पुरुषार्थ करो। तो इस सीजन में जो पहली मुरली चली है 30-10 को डबल विदेशियों के आने पर, उस मुरली को तो सबने सुना होगा, ये नहीं पहुंची होगी 15 तारीख वाली, लेकिन वो तो सबने सुना होगा। मुरली सुनने का अर्थ ही है सुन करके समाकर समान बनना। मुरली सुनकर उस बात को समाकर अर्थात धारणा स्वरूप बनकर समान बनना। तो आप लोगों को तो मुरली याद हो और उस पर अभ्यास भी अवश्य किया होगा। आप लोग अभी से अटेंशन दे दो कि जो 15 दिन के गैप पर मुरली चलती है, तो जो मुरली चलती है उस मुरली से अगली मुरली के बीच में 15 दिन का फर्क होता है। उस 15 दिन पर अगर आप फुल अटेंशन दे दो तो भगवान की उस मुरली में धारण करने की इच्छा शक्ति कहो, वरदान कहो, दुआ कहो, बाबा की होती ही है। सिर्फ अटेंशन दे दो। अगर एक मुरली न धारण की तो फिर जितनी भी मुरली चलेगी धारणा नहीं हो पाएगी और मुरली का लाभ नहीं ले पाएगी। तो पहली मुरली थी विशेष दो बात की, एक सदा स्नेही बनो, दूसरा अखंड महादानी बनो। सदा स्नेही अखंड महादानी बनो। बाबा तीन शब्द स्नेह के ऊपर कहता है, कभी प्यार, कभी प्रेम, कभी स्नेह। तो प्यार, प्रेम और स्नेह तीनों में अंतर है या एक ही है? क्या कहेंगे शक्तियां? प्यार, प्रेम और स्नेह तीनों में अंतर है या एक ही है? पांडव क्या कहते हैं? अच्छा, शक्तियां एक ही कहती है। इंग्लिश में तो एक ही शब्द है लव। क्या कहते हैं पांडव? अलग अलग है। क्या अंतर है तीनों में? जैसे याद शब्द है, लेकिन याद की स्टेजेस अलग अलग है ना। कहने में तो याद ही आएगा, लेकिन साकारी, आकारी, निराकारी स्टेजेस है ना। ऐसे बाबा जो प्यार, प्रेम और स्नेह ये तीन शब्द हैं, तीनों में अंतर है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है। जैसे यह पता पड़ा भगवान आया है, हमारा यही बाप है, इससे हमें प्राप्ति होने वाली है, प्यार हो गया। तो प्यार तो स्वतः होता है, लेकिन प्यार के बाद जो सेकंड स्टेज है प्रेम, उसको करना पड़ता है। शिव बाबा समझ गए सब कुछ बाबा से मिलने वाला है, फिर भी बुद्धि योग लगता नहीं, लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, अपने आप नहीं है, करना पड़ता है। तो प्रेम करना पड़ता है, और जहां करना पड़ता है वहां कुछ हमारी मर्जी, कुछ जिससे प्रेम किया उसकी मर्जी, दोनों चलती है। और स्नेह निभाना पड़ता है, स्नेह में चाहिए कुर्बानी। स्नेह का अर्थ है जो स्नेही को पसंद है वही करना है। स्नेह में अपनी मर्जी नहीं है, स्नेह में जिसके साथ स्नेह जोड़ा है उसको जो पसंद है वही हमें करना है। तो स्नेह में कुर्बानी देनी पड़ती है। प्यार स्वतः होता है, प्रेम करना पड़ता है, और स्नेह में कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस बच्चे का बाप के साथ स्नेह है, अर्थात जो बाप चाहता है, जैसे बाप चाहता है वैसे वह आत्मा करना चाहती है या पूरा पुरुषार्थ कर रही है प्रभु के पसंद, तो ऐसी आत्मा के लिए बाबा ने इसी मुरली में कहा है, मेहनत मुक्त हो जाता है, मोहब्बत का फल खाता है, मोहब्बत का फल खाता है। लेकिन कौन? जो स्नेही है वो, प्रेम करने वाला, कब मोहब्बत कब युद्ध, सदा नहीं। कभी युद्ध पुरुषार्थ, कभी मोहब्बत, लेकिन स्नेही आत्मा मोहब्बत का फल खाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हम आत्माओं का बाप के साथ प्यार भी है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, लेकिन बनना क्या है? सदा के स्नेही, सदा के स्नेही। स्नेह है, स्नेह का अर्थ ही है कुर्बानी देना, अपनी कमियों कमजोरियों का, अपनी मन मत का, संग दोष का, पर मत का कुर्बानी देना। जो बच्चा जितनी कुर्बानी दे चुका है या दे रहा है वो उतना ही स्नेही है और वो उतना ही मोहब्बत का फल खाता है। तो एक बात है, तो बाबा ने बच्चों का चार्ट चेक किया कि बच्चों का स्नेह बाप से है, लेकिन सदा स्नेह क्यों नहीं है, इसका कारण क्या बताया बाबा ने? कैसे सदा स्नेही बन सकते? मुरली में क्या बताया है? सदा स्नेही कैसे बन सकते हैं जी? आपकी आवाज तो हमारे तक नहीं पहुंचती है क्योंकि सब अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं। ठीक है, सदा स्नेही बनने की विधि बाबा ने बताई, अखंड महादानी बनो, अखंड महादानी बनो। इसमें बाबा ने तीन बातें बताई है, एक सफल करो, दूसरा सहयोग दो और तीसरा अखंड महादानी बनो। सफल करो, सहयोग दो और अखंड महादानी बनो। सफल करो स्वयं के लिए, सहयोग दो ब्राह्मण आत्माओं को और महादानी बनो दुखी और भगत आत्माओं पर। सफल करो स्वयं के लिए, सहयोग दो ब्राह्मण आत्माओं को और अखंड महादानी बनो, दुखी आत्माएं या अपनी भगत आत्माओं पर। पहली बात है सफल करो। बाबा बार बार कहता है सफल करो, सफलता लो। सफल करो, सफल करने का जब बात आती है तो ब्राह्मण आत्माओं के मन में एक संकल्प आता है, सिर्फ धन को सफल करने के लिए कह रहा है, बस धन दे दो यज्ञ में, धन लगा दो, बस उसको सफल करना कहते। लेकिन नहीं, सिर्फ धन नहीं है, लेकिन सफल करने के लिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई है। कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करो, जो आपका व्यर्थ जा रहा है उस व्यर्थ को बचाकर सफल कर लो। जैसे आपका संकल्प तो सदा चलता ही है, लेकिन देखो कि मेरा संकल्प कहां कहां जा रहा है। तो जो संकल्प व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ की परिभाषा है कि जिस संकल्प से ना स्वयं का कल्याण होता हो, ना विश्व का कल्याण होता हो, वो संकल्प व्यर्थ है। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, मैं समझता हूं 90% संकल्प बिना काम के ही चलते रहते, कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो जो ये व्यर्थ जा रहा है, इसी को समर्थ की तरफ परिवर्तन कर दो, सेवा में लगा दो, तो सफल हो जाएगा। और ये संकल्प जो हमारे व्यर्थ जा रहे हैं, जो हम संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो संकल्प आपके चल रहे हैं और उस पर ध्यान आप नहीं दे रहे हो, माना आप अपने मन बुद्धि को खाली छोड़ा हुआ है, जो चाहे सोचो, जो चाहे निर्णय करो। दुनिया में भी कहते हैं खाली मन, इसलिए शैतानी के संकल्प चलते। शैतानी अर्थात पूर्व जन्म, ब्राह्मण से पहले शूद्र जन्म के संकल्प चलते, और जितना वो संकल्प चलते हैं उतना पहले का संस्कार और पक्का होता जाता है। ये बहुत गहरी बात है, पहले का संस्कार और पक्का होता जाता है। जो हम संस्कार को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, सबसे हल्की सी बात यही है कि हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन नहीं है, हम अपने मन को काम नहीं दे रहे हैं, मन अपने आप जो चाहता है सोच रहा है। इस कारण से मन पूर्व संस्कारों के बस सोच रहा है और सोचते सोचते वो बात और पक्की होती जाती है। दुनिया में भी कहते हैं मनुष्य जो सोचता है वो बन जाता है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो जो अपने व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बेकार के संकल्प चल रहे हैं, इन संकल्पों को सफल करो, शुभ भावना में लगाओ, कल्याण की कामना में लगाओ, विश्व की सेवा में लगाओ। संकल्प तो चल ही रहे हैं, इसको इसमें सफल करो। एक बात है, सफल करो व्यर्थ से बचाओ। दूसरी बात है एकानामी करके सफल करो। एकानामी करके, एकानामी की विधि क्या है? जैसे आप मान लो किसी के लिए कल्याण का सोचते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, अब आप सोच रहे हो कल्याण हो जाए, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है तब आपका पहुंचता है, उससे एकानामी करो। पावरफुल स्थिति में स्थित हो करके जो संकल्प करोगे वो आपका 50 संकल्प, यह एक संकल्प बराबर हो जाएगा। जो वो 50 बार संकल्प करने पर काम किया, पावरफुल स्थिति में एक ही बार संकल्प करने से वो काम हो जाता। इसको कहा जाता है एकानामी करके सफल करो। ऐसे हर एक चीज का आप बाणी बोलते हो, सारा दिन तो बाजा बजता ही रहता है सबका, लेकिन देखो जो बोल निकल रहे हैं क्या इस बोल से किसी का कल्याण हो रहा है? अगर बोल से कल्याण नहीं हो रहा है वो बोल व्यर्थ है। उस बोल को अर्थात लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो, सब बोल परिवर्तित हो सकते हैं। अटेंशन दो। कई कहते हमें लौकिक बात करनी पड़ती है, जरूर करो, लेकिन लौकिक को अलौकिक में तो बदल के बात करो। उदाहरण के रूप से मान लो आप किसी बिजनेस वाले से बात करते हो, लौकिक में बिजनेस की बात है, उसको अलौकिक में बदलने की विधि, उसको बिजनेसमैन जानते हो लेकिन अंदर स्मृति रहे ये भी आत्मा परमात्मा की संतान है, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। हम भगवान के बच्चे से बात कर रहे हैं, अरे यह संकल्प अंदर रख कर बात करके तो देखो कि आपके वाणी का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अलौकिक में चेंज करो, जो व्यर्थ ही जा रही है इसको सफल करो, और वाणी की भी एकानामी करो, पाप की याद में रहकर आप जो बोल बोलेंगे वो एक बोल दस बोल के बराबर होगा। जो बात आप दस बार कहकर समझाओगे एक बार कहने से समझ जाएगा। एकानामी करो, और वही जो समय बचा बोल बची वो सेवा में लगाओ। ऐसे धन को देखो, धन जो व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ की परिभाषा बता दिया है, जिससे ना स्वयं का कल्याण ना समाज का कल्याण होता हो वो व्यर्थ है। तो जो व्यर्थ जा रहा है उसको समर्थ की तरफ लगाओ, सेवा में लगाओ, और धन की भी एकानामी करके सेवा में लगाओ। एकानामी का अर्थ है, जैसे मान लो आप यहां से घर जा रहे हो, आप स्टेशन पर जाते हो, सामान है आपके पास, अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो सामान को खुद उठा लो, कुली का पैसा बचा लो, वो सेवा में लगा दो। जिस चीज में बच सकता है बचाओ, उसको सेवा में लगाओ। जो चीज हम कर सकते हैं वो करके सेवा में लगाओ। आपके पास ज्यादा है नहीं, लेकिन एकानामी तो कर ही सकते हैं ना, सब कोई सब बात में कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने धन को आप सफल करो, एकानामी करो, हर बात में एकानामी करो। इस शरीर को महंगे से महंगा कपड़ा भी दे सकते हो, बीच का कपड़ा भी दे सकते हो, ये तो अपने ऊपर है। बाबा कहता है इसको चाहे 36 प्रकार का भोजन दो, चाहे पेट क्या मांगता है, एक पाव आटा, अपने इससे बचा करके सेवा में लगाओ। जो चीज हो सकती है करो, एकानामी हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि कोई चीज का केयर न करके ऐसे कर देना, नहीं, हो सकती है वो करो। जैसे 2-3 एग्जाम्पल दिया, हो सकने का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है कि जितनी कितनी, आखिरकार जितने को किस परिभाषा में किया गया है। बाबा कहता है, मुरली में तो सुनते हैं, गरीब का 5 साहूकार का 500 इक्वल है, लेकिन उससे और सहज बाबा ने करके बताया है। मान लो आपके पास 50 रुपए हैं और आपका परिवार है, उस 50 रुपए से आपके 3-4-5 जो भी मेंबर हैं वो खर्चा चलता है, एक पैसा भी बचता नहीं है। जो आप एकानामी करके सेवा में लगा सको कर सको। लेकिन बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि अगर मान लो आपके घर में 5 मेंबर थे, पैसा एक भी नहीं बचता था, लेकिन अगर छठा जन्म ले ले तो मार डालोगे या पालोगे? पालेंगे ना। कहां से आ गया उसके लिए? अभी तो कहते थे एक पैसा भी नहीं बच रहा है, कहां से आया उसके लिए? निकाला ना इसी में से, एडजस्ट किया ना, या कुछ और ज्यादा मेहनत की ना, तो जब यहां हो सकता है तो प्रभु के नाम क्यों नहीं हो सकता है? अगर नहीं कर रहे हो, इसको सफल करना नहीं कहा जाएगा। सफल करने का अर्थ ये नहीं कि पूरे घर का खर्चा पूरा हो जाए, मेरा भी पूरा हो जाए, तो और जो बचे वो यज्ञ में दे दिया। इसको सफल करना नहीं कहा जाता है। सब कुछ पूरा करके बचा खुचा भगवान का, इतना गिरा हुआ है भगवान क्या, तो सबका बचा खुचा ही लेगा क्या? एक तरफ तो हम कहते हैं बाबा मेरा है, सबसे पहला नंबर बाबा का रखो, बाबा को पीछे नहीं करो, बाबा को आगे करो। जब बाबा को आगे करोगे तब बाबा आपको आगे करेगा। अगर बाबा को ही पीछे रखोगे तो क्या गति होगी? माया बहुत तंग करती रहेगी, पीछे ही रहना पड़ेगा। इसलिए समझ गए हो, सफल करो, एकानामी करके भी सफल करो। दूसरी बात है, ब्राह्मणों को सहयोग दो। सहयोग का अर्थ है किस प्रकार से सहयोग देंगे? ब्राह्मण ब्राह्मण को किस प्रकार से सहयोग देंगे? किस प्रकार से सहयोग देंगे? तीन बातें सहयोग देने की। एक बात है, कभी किसी ब्राह्मण आत्मा की गलती अपने दिल में नहीं रखो। पहली बात, किसी की गलती देखा सुना कुछ भी देखा पर देख लिया, इसके बाद अंदर नहीं जाने दो, उसकी गलती को अंदर नहीं रखो। अगर किसी की गलती अंदर रख ली तो जब भी आप उसको देखेंगे उसी भाव से ही देखेंगे, ये ऐसा है, ये बहुत गलत है। आज हमने कोई गलती की, हो सकता है हम पुरुषार्थ करके उस गलती को खत्म कर दिया होगा, लेकिन आप उसी भाव से अभी भी देख रहे हैं। तो एक ब्राह्मण को सहयोग दो, किसी की गलती दिल में नहीं रखो। दूसरी बात, हर एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत ऊंची नजर से देखो, बहुत ऊंची नजर से देखो। यह कोई भी ब्राह्मण आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। अभी इस 15 तारीख वाली मुरली में जो 16 को बाबा ने कहा, जो लास्ट बच्चा है, लास्ट बच्चा माला का नहीं, लास्ट बच्चा है, उसके प्रति भी भगवान का बहुत प्यार है। सोचो, जिसको भगवान प्यार करता हो इतना, वो कैसा होगा। अरे बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहा है कि देखो, जो छोटा होता है उसको मां बाप उंगली पकड़कर चलाते हैं, और जो बड़ा होता है खुद चलना पड़ता है। तो सोचो, भगवान उसको खुद उंगली पकड़कर चला रहा है, कितना महान है। ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण आत्मा को बहुत ऊंची दृष्टि से देखो। इस समय अगर कुछ कमी है सब में है, लेकिन यह हम आप सबको पता है कि कल्प पहले यही देवी या देवता बने थे, अब भी बनेंगे, गारंटी है। तो देवताएं साधारण है क्या? अब भगवान के बच्चे भगवान ने चुना है, और भविष्य में देवता बनेंगे। बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में इनकी जड़ मूर्ति की पूजा की, देवी देवताओं की जड़ मूर्ति की पूजा की, और अब वही आत्माएं चैतन्य रूप में बैठे हैं, तो उनका अवगुण देख रहे हो। जब जड़ थे तब महिमा की, और चैतन्य में अवगुण देख रहे हो, ये तो उल्टा हो गया। आप ही देवी देवता बनेंगे ना, या कोई दूसरा बनेगा? आप ही बनेंगे ना। तो चैतन्य में हो तब हम अवगुण देख रहे हैं, और भक्ति में इन्हीं की जड़ मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ते थे, महिमा करते थे, और इतनी महिमा करते थे। एक ने हमसे प्रश्न पूछा कि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा हमें दुख दे, नाराज करे, तब भी हम उसकी महिमा करें? क्या विचार है आपका? क्या विचार है? हमने कहा जरूर महिमा करो। बोला, मतलब प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है, कहना तो सहज है लेकिन प्रैक्टिकल ये बात हो नहीं पाती है। मैंने कहा देखो, आपने किया हुआ है, मान लो किसी देवी देवता की आप पूजा करते थे, फिर भी आपका नुकसान हो गया, तो पूजा करना छोड़ देते या और जोर से करते हो? क्या करते हैं? और जोर से करते हैं ना। तो जिस कारण से नाराज है, आप और जोर से लगा के मना लो। भक्ति में तो मनाया है ना, और वही बैठे हैं, कोई दूसरे तो है नहीं, तो जब भक्ति में मनाया है तो अब मनाने में क्या परेशानी है? वो तो जड़ थे, ये तो चैतन्य है। सहज हो सकता है, इस बात को सामने लाओ। तो दूसरी बात है, क्या बताई? बहुत महानता की दृष्टि से देखो। तीसरी बात है, सदा ब्राह्मण आत्माओं के प्रति आंतरिक संकल्प शुभ भावना का ही, चाहे वो हमें गाली दे लेकिन आपको शुभ भावना ही रखनी है। बाबा ने मुरली में कहा था, चाहे रावण से भी ज्यादा तीखा दुश्मन बन के आए तो भी आपको शुभ भावना रखना है। ये थोड़ा समझने की चीज है। ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण आत्मा को कभी दुख देना नहीं चाहती है, क्योंकि पता है मेरा यही परिवार है। फिर भी हो जाता है, क्या कारण है? हो जाता है, क्या कारण है? इसका कारण है हिसाब किताब। ना चाहते हुए होना, ये है हिसाब किताब। हम आप सब ही ज्यादातर इकट्ठे रहे हैं, मेरे समझ से 60-70 जन्म तो रिश्तेदारी उश्तेदारी में मिला करके इकट्ठे ही रहे होंगे। अब थोड़ा सा अलग हुए तो जब इतने समय इकट्ठे रहे तो हिसाब किताब किसके साथ है? किसके साथ ज्यादा होगा? इन्हीं के साथ होगा ना। हिसाब किताब है इसका एक छोटा सा उदाहरण। मान लो आपके सेंटर पर या यहीं आपकी टीचर बहन आपके क्लास में से किसी एक की ज्यादा महिमा करे, उसको थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ाए, आपकी क्या हालत होगी? कैसा लगेगा आपको? समझ गए होंगे। और वहीं पर अगर एक अज्ञानी आत्मा आ जाती, उसकी टीचर महिमा करती तो आप खुश होते, आप भी महिमा करते। एक अज्ञानी की टीचर महिमा कर रही तो खुश हो रहे हो, और ज्ञानी की कर रही है तो परेशान हो रहे हो। इससे सिद्ध है हमारा हिसाब किताब इनके साथ। नहीं तो ब्राह्मण की महिमा में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार के ये हैं। लेकिन नहीं, हिसाब किताब के कारण ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ईर्ष्या को खत्म करने का साधन, हिसाब किताब खत्म करने का साधन शुभ भावना है। तो तीसरा काम है, सदा हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना। वो आपकी गाली इंसल्ट करे, गाली दे, ग्लानी करे, आप शुभ भावना रखो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, बाबा इसकी भी बुद्धि आपके साथ एकाग्र हो जाए, ये भी बाबा आपसे पूरा वर्षा ले ले, बाबा ये भी आपका नंबर वन बच्चा बन जाए। ऐसे आप उसके लिए शुभ भावना रखो तो जो आपका हिसाब किताब एक महीने के अंदर खत्म होने वाला था वो चार पांच दिन में ही खत्म हो जाएगा। और जैसे हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो जो आपके लिए उल्टा बोल रहा था वो खुद ही रियलाइज कर लेगा, नहीं मेरी गलती है, और आपके साथ उल्टा हो जाएगा अपने आप ही। और जब तक हिसाब किताब है तब तक उसे कोई भी समझाए मानने वाला नहीं है, कोई भी समझाए। इसलिए शुभ भावना रखो। तो ब्राह्मणों के लिए सहयोग दो और प्रजा और दुखी आत्माओं को योग का दान दो, शक्तियों का दान दो। बाबा ने कहा मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान दो। संबंध संपर्क से खुशी का दान दो। ये करना है। अब दान देने की विधि क्या है और हम दान देते हैं उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, यह आप लोग सोचना। फिर कभी क्लास का समय होगा तो बताएंगे। समय पूरा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क से कैसे दान दें, जानते भी हैं और सोचना। बाबा ने इस मुरली में एक नई पॉइंट कही थी, शायद पहले कही होगी, हमारे ध्यान से तो पहली बार मैंने सुना है। वो ये था कि बाबा ने कहा था कि सफल करो अर्थात सहयोग दो, मनसा से शक्तियों का दान, पाणी से ज्ञान का दान, कर्मणा से गुणों का और बुद्धि से समय का सफल। ये पहली बार सुना है, बुद्धि से समय को सफल करो। समय सफल करो सुनते थे लेकिन बुद्धि से समय को सफल करो ये पहली बार सुना है। ठीक है, क्या करेंगे? अभी आप लोग बाबा के घर में सेवा के लिए आए हो, प्रतिपल सेवा। देखो अपने जो भी संकल्प चल रहे हैं, सुंदर विधि है परिवर्तन की, चेक करो ये संकल्प भगवान को पसंद है। अगर है तो चलाओ, नहीं परिवर्तन करो। जो बोल बोलो, सोचो भगवान को ये बोल पसंद है तो बोलो, नहीं परिवर्तन करो। जिस विधि से कर्म कर रहे हो सोचो यह विधि से कर्म करते हुए देख भगवान खुश हो रहा है। अगर है तो उस विधि से करो, नहीं तो परिवर्तन करो। जिस विधि से संबंध संपर्क में आते हो उस विधि से खुशी दूसरे को दे सकते हो या आपसे उनको खुशी मिलती है तो उस विधि से करो, नहीं तो परिवर्तन करो। साधारण संकल्प नहीं चलने देना, चल रहा है ऐसे नहीं, ये महायज्ञ है, यहां बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत करो सफलता ही सफलता है, भगवान का वरदान है इस धरणी को, महायज्ञ है, जो चाहे सो कर सकते हो, जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा सा अटेंशन दो बस। ऐसे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं, सफल करो। नहीं कर्मणा सेवा है बैठकर एकांत में अशरीरी होने का अभ्यास करो, बाबा को याद करने का अभ्यास करो, मुरलियां ले लो पढ़ो, एकांत में बैठकर मनन चिंतन करो। ऐसे बातें तो सदा करते ही रहे, करते भी रहेंगे, यहां समय व्यर्थ नहीं जाने दो। एक घंटा सेवा किया फिर जाकर सो गए या बातें करते रहे, ये सब नहीं, सफल करो। और यहां का सफल किया हुआ आपका कोई 15 दिन किसी चीज पर पुरुषार्थ कर ले, उसका संस्कार बन जाएगा, फिर जब आप घर जाएंगे तो यह संस्कार अपने आप मदद करेगा, वो काम स्वतः ही होता रहेगा, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इसको कहा जाएगा बाबा के घर की सेवा का फल। अच्छा, ओम शांति।
जी।